एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मनुखी दुनिया विच धर्म की लोड़ इसे तरह ही है जैसे कि अन्न पानी की लोड़ है। पंज तत दा बनिया ए पुतला अन्न पानी तो बिना नहीं रह सकता, पर सूक्ष्म देही जो साड़ी जीव आत्मा है वो प्रभु चिंतन तो बिना नहीं रह सकती। धर्म की है इस दे उते अनंत काल तो बहस मुबासे और विचारां होंदियां रहीं। धर्म दा अखरी अर्थ है धारण करना, जिसने धारण कीता होया है वो परमात्मा। धारण करना धर्म है। जिस असूल नियम दे मुताबक संसार दी सिरजना हुई, संसार दा टिकाओ है, संसार खड़ा है, उत्पत्त हो रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, इसनू धर्म कहिंदे ने। धारण कीता होया तो इसकी लंबी चौड़ी विचारधारा धर्म ग्रंथां विच अपने अपने ढंग दे नाल मौजूद है। एक ढंग साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी है जो बड़ा अदुती है। पुराणक मिथिहास है कि इस जमीन नूं एक धोले बैल ने चुकया होया और एक सिंह दे उपर ही चुकया होया। जद वो थक जांदा है तां फिर वो दूसरे सिंह ते चुकदा है। इस तरह जमीन दे च भौंचाल आ जांदे ने, जलजले आ जांदे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस ते तर्क ते नहीं की थी, पर एक सवाल खड़ा कीता है। तर्क करना होर गल है, सवाल खड़ा करना होर गल है। महाराज कहिंदे ने फिर ये दसो, जमीन नूं चुकिया होया धौले बैल ने ते धौला बैल कित्थे खड़ा है? जे आखो किसे जमीन ते खड़ा है फिर वह जमीन किसते खड़ी है? जे आखो धौले बैल ते खड़ी है फिर वह धौला बैल कित्थे खड़ा है? तो इस तरह गल कित्थे मुकावांगे? धरती होर परे होर होर तिस्ते भार तले कौन जोर? एक धरती ते है ने, अनंत धरतियां ने, फिर अनंत धौले बैल होने चाहिए ने, पर उन्हां धौले बैलां दे थले भी फिर धरतियां होनियां चाहिए ने। ए विचार सच्चाई दी कसौटी ते पूरी नहीं उतरदी, पर चूंकि धर्म ग्रंथां दे विच है इस वास्ते श्रद्धा दी भावना नाल इस दी खोज करनी पएगी। गुरु नानक ने सही राज जगत दे सामने रखे, धौल धर्म दया का पूत। दरअसल धौला बैल धर्म ही है, जिसने जमीन नूं चुकिया होया है। ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे प्रभु दी बनाई हुई एक मर्यादा विच अटल खड़े ने, धर्म अनुसार खड़े ने, और धर्म ही धौला बैल है। धर्म नूं धौला क्यों आख्या? धौले तो मुराद चिट्टा, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या भारतीय धर्म ग्रंथां विच मौजूद है, स्वैत वस्त्रां दी, चिट्टे वस्त्रां दी। धर्मी मनुख दे अंदर एक चिट्टी धारी बनती है जो बार तो चिट्टे रंग तो बड़ा प्रभावित होंदा है। जिहड़ा मनुख बार चिट्टे रंग तो बहुत प्रभावित होवे, बड़ी कशिश उसके अंदर पैदा होवे, समझ लेना चाहिए उस दे अंदर भी कोई चिट्टे रंग की धारी है। और चिट्टा रंग धर्म का मनिया गया, धौल धर्म दया का पूत। किधरे जंग हो रही होवे तो चिट्टे रंग का कपड़ा झुलांदे ने, ये अमन ते सुलह का चिन्ह, सुलह की निशानी मनी जाती है। धर्मी बंदा अमन पसंद होता है, धर्मी बंदा सुलह कुन होता है। धर्मी मनुख के अंदर मैत्री की भावना आती है, धर्मी मनुख जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं। धौल धर्म दया का पूत, यह जड़ा धर्म है गुरु नानक की दृष्टि विच इसकी मां दया है, यह प्रभु की दया तो जन्म है। मनुख के अंदर भी जब धर्म का जन्म होगा तो दया तो बिना नहीं हो सकता। मूल बिना शाहांकत आए, जड़ ही नहीं, मूल ही नहीं तो पत्ते किथे, फुल किथे, फल किथे। धर्म फल है ते धर्म दे फल दी जड़ की है, मूल की है। साढ़े देश के एक प्रसिद्ध कवि महात्मा तुलसी का कहना है, तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में पा। धर्म का मूल की है दया। जिथे दया नहीं धर्म का जन्म नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज दया का पूत, धर्म नो दया का पुत्र कहते हैं। दया इसकी मां है। जे दया इसकी मां है तो फिर इसका पिता संतोख थाप रखिया जिन सूत। इशारा, धर्म का पिता है संतोख और धर्म की मां है दया। दया तो सेवा भाव का जन्म होता है और संतोख तो सिमरन का जन्म होता है। दया नहीं तो मनुख सेवा नहीं कर सकेगा और संतोख नहीं तो मनुख सिमरन नहीं कर सकेगा। सेवा करके संसार नाल जुड़ना है और सिमरन करके निरंकार नाल जुड़ना है। सिमरन कौन करेगा? संतोखी। सेवा कौन करेगा? दयालु। दया ते संतोख दे जोड़ तो जिस धर्म का जन्म होता है वो सेवा ते सिमरन ते खड़ा है। गुरु घर की बड़ी सुंदर व्याख्या है। इस वास्ते पातशाह ने संगत ते पंगत बना दिती, बई संगत दे सिमरन और पंगत दे सेवा। पंगत दे सेवा वह करेगा जिथे दया होगी, संगत दे सिमरन वह करेगा जिथे संतोख होगा। असी संसार नालों नहीं टुटना। दयाहीन मनुख संसार तो टुट जाते हैं। साढ़े देश के अणगिनत महात्मा संसार तो किनारा कश हो गए, एक पासे हो गए और ये कहने लगे हर एक दे अपने अपने कर्मां दा भोग है भोगण। दरअसल दयाहीन मनुखां तो इन्हां विचारां दा जन्म होया। दयालु सेवा भाव ते तत्पर हो जांदा है, अगले दा दुख वंडांदा है, अगले दा दर्द वंडांदा है। तो दया तो सेवा दा जन्म और संतोख तो सिमरन दा जन्म। सिमरन करके करतार नाल जुड़ना, सेवा करके संसार नाल जुड़ना, यही गुरमत दी देन है, यही गुरु नानक दा दर्श है। धर्म नूं कह दिता है इहदा रंग चिट्टा है। दरअसल मनुख जिस जिस रंग तो प्रभावित होंदा है उस तो उसके सुभाव का पता चलता है। और अजोके मनोविज्ञान ने इस गल की बड़ी प्रबल तस्दीक कर दिती है कि रंगा का मनुख के उत्ते बहुत गहरा असर पैंदा है और मनुख के अंदर भी कुछ रंग ने। धर्मक दुनिया के परमात्मा की दुनिया के कुछ विशेष रंग मन्ने गए ने, जिन्हां रंगां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बकायदा आउंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना है, रत्ता पैनण मन रत्ता, सुपे दी सतदां, नीली स्याही कदा करनी, पैरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, धन जो बन तेरा नाम, बाबा और पैनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सतगुरु का फरमान भी जो मन परमात्मा दे नाम विच रत्ता गया ये असी लाल रंग की पोशाक पहनी है, क्योंकि जिस वक्त मन लीन होंदा है, मन विच प्यार पैदा होंदा है, ता अंदर जिहड़ी धारी बनती है वो लाल रंग की बनती है। साढ़े देश दे तमाम साधु समाज ने अगर गैरक वस्त्र पहन लै, गेरवे रंग दे कपड़े पहन लै, तां ए एवें नहीं सी, बल्कि इहदे विच बहुत एक गहरी दृष्टि सी, अंदर प्यार पैदा होया, ईश्वर की खिच पैदा हुई। तो जिस रंग की धारी बनी वो लाल सी, लाल कपड़िया का मोह जाग पिया, गेरवे वस्त्रां का मोह जाग पिया। इस लाल रंग की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बहुत है। कवन बनीरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली, बिसम बिसम बिसमें ही भई है, لال گلال رنگارے کہو نانک سنتن رس آئی ہے جیو چاک گونگا مسکارے یا لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ بھاگا میلا کدے نہ ہوئی نہ لاگے داگا اس لال رنگ دا بار بار ذکر آمنا اے شاعرانہ تخیل نہیں ہے کبھی دی کلپنا نہیں ہے بلکہ بہت وڈی سچائی ہے جو من نام دچ رنگیا جاندا ہے رتا جاندا ہے اندر لال رنگ دی دھاری بن دی ہے کبھی سرمور نند لال نے بھی اس سمبندھ وچ اپنے وچار ویکت کیتے نے انہاں دا کہنا ہے گلال افشانی از دست مبارک زمین و آسمارا سرخ رو کر اے میرے پادشاہ اے گرو گوبند سنگھ جی تسی گلال کی چھڑکے ہے کہ زمین تے آسمان نو سرخ رنگ وچ رنگ چھڑے ہے گلال لال رنگ ہوندا ہے گلال گلابی رنگ گلال افشانی از دست مبارک زمین و آسمان را سرخ رو کر اے میرے پادشاہ زمین تے آسمان نو تسی سرخ رو کر دیتا ہے بھاو چھوٹیاں نو بھی رنگ چھڑے ہے وڈیاں نو بھی رنگ چھڑے ہے زمین نو بھی رنگ چھڑے ہے آسمان نو بھی رنگ چھڑے ہے مورکھاں تے بھی رنگ چڑھ گیا ہے سیانیاں تے بھی رنگ چڑھ گیا ہے نربل کمزوراں تے بھی رنگ چڑھ گیا ہے بلواناں تے بھی رنگ چڑھ گیا ہے ایسا تسی گلال چھڑ کے ہے سارے رنگے گئے نے پرماتما دا چنتن کردیاں کردیاں جد اندر پیار دی کرن پہلی دفعہ پیدا ہوندی ہے اس دے نال ہی اندر لال رنگ دی دھاری پیدا ہوندی ہے ایسا منک باروں لال رنگ تو بہتا پربھاوت ہوئے گا اس واسطے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے اندر اس لال رنگ دا بڑا ذکر ہے لال گلال گہبرا سچا رنگ چڑھا لال رنگ تو بعد گرو نانک دیو جی مہاراج نے سفید رنگ دا ذکر کیتا ہے رتا پینن من رتا سپے دی ست دان ست دان اچا اخلاق تے پروپکاری برتی صلح کن برتی نام جپدیاں جپدیاں جد بندے دا آچرن اچا ہو جاندا ہے اخلاق اچا ہو جاندا ہے اور اندر صلح کن برتیاں جنم لیندیاں تاں اس وقت ہردے دے اندر جس رنگ دی دھاری بندی ہے او رنگ چٹا ہے سمرن کردیاں کیڑی تاری پہلے بنے گی اس دا کوئی پہلے تو پتا نہیں ہوندا تو جس رنگ دی دھاری بن دی ہے منک اسے تو ہی پربھاوت ہون لگ پیندا ہے اگر نام جپدیاں جپدیاں اجے پیار تے نہیں پیدا ہویا پر پروپکاریاں برتیاں دا جنم ہو گیا ہے اخلاق اچھا ہو گیا ہے دانی سبھا ہو گیا ہے تو جس رنگ دی دھاری بنے گی وہ چٹا ہوئے گا ایسا منک چٹے کپڑیاں تو بہت پربھاوت ہوئے گا ایسا منک تن دیتے چٹے کپڑے دھارن کرے گا ہندوستان دا ایک سادھو سماج دا ٹولا جی چٹے کپڑیاں تو بہت پربھاوت ہویا تو وہ ایویں نہیں اندر دی چھاپ بار پرگٹ ہوئی رتا پہنن من رتا سپے دی ستدان نیلی سے آئی کدا کرنی پہرن پیر دھیان نیلی سے آئی دو رنگ نیلا تے سیاہ نیلا رنگ تے کالا رنگ کدا کرنی وکاراں نوں جڑا کٹ دینا ہے دبداں نوں جڑا مار دینا ہے ہن مارن واسطے بیر رس چاہیے دا تے مارن واسطے روس بھی چاہیے دا ایک گل وکھری ہے باہر ظالم نوں مارنا ہے یا اندر کرودھ نوں مارنا ہے باہر کسی دراچاری نو مارنا ہے یا اندر کام نو مارنا ہے مارن واسطے روس تے جوش چاہید ہے جتھے روس ہی نہیں اتھے جوش نہیں پیدا ہوئے گا روس دا مطلب ہے میں نہیں قبول دا اس ظلم نو میں نہیں پروان کردا اس انرتھ نو میں نہیں قبول کردا تو روس جس وقت روس پیدا ہوئے گا اندر جس رنگ دی دھاری بنے گی وہ کالا رنگ ہوئے گا اج بھی کدھرے پروٹیسٹ کرنا ہوئے روس پرگٹ کرنا ہوئے تو ہاتھ دے اُتے لوکی کالے بلے بن دین یا کالے رنگ دے کپڑے پہن کے جان دین کالا رنگ سوگ دی نشانی نہیں روس دی نشانی روس روس پرگٹ کرنا ہے تو तो जिस वक्त अंदर काम होवे, क्रोध होवे, लोभ होवे, मोह ममता होवे, ते इनू वेख के रोस अंदर पैदा होंदा होवे भई ये क्यों ने, इनानू कढ़ना है, इनानू मारना है, उस रोस भरी हालत दे च अंदर जो रंग बनेगा वो काला होवेगा। इस वास्ते जगत दे चंद फकीरां ते साधुआं ने बकायदा काला बाणा भी धारण किया। बाबा श्री चंद दी चलाई संपर्दा उदासीन उहदे च एक तबका काला लिबास पहनदा सी और हुण भी पहनदा। इस्लाम दे फकीर सूफी करीबन करीबन तमाम काले ही बस्तर पहनदे सन, जिसका थोड़ा जिहा जिक्र बाबे फरीद दी बाणी दे चों भी मिलदा है। काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस, गुन ही भरिया मैं फिरां लोक कहन दरवेश। मेरे काले कपड़िया नूं वेख के लोकी दरवेश कहिंदे ने, लोकी फकीर कहिंदे ने, लोकी संत कहिंदे ने। तो कुछ साधुआं दा गेरवा रंग दा बस्तर पहन लेना, या चिट्टे रंग दे बस्तर पहन लेना, या काले रंग दे बस्तरां नूं धारण कर लेना, ये एवें नहीं सी, कोई पखंड नहीं सी, कोई दिखावा नहीं सी। अंदर दी धारी, अंदर दा रंग बार प्रगट होया, अंदर रोस नहीं ते बारों का काले कपड़े पहन लेने, ये पखंड। अंदर प्यार नहीं ते बारों भगवा लिबास पहन लेना, ये दुख है। और इसे तरीके नाल अंदर उच्चा इखलाक नहीं, दानी बिरती नहीं, परोपकार नहीं, तो चिट्टे बस्तर दिखा के अपना भेख प्रगट करना, ये भी दुख है, ये भी पखंड है। तो नीली स्याही कदा करनी, स्याह रंग रोस दा है और नीला रंग जोश दा है, वीर रस दा है। जद मनुख वीर रस दे भर जांदा है, रोस तो बाद जो जोश पैदा होया, वीर रस पैदा होया, वे हुण ते खत्म ही करना है, हुण जालम नूं मिटा के रखना है, हुण अंदर दे काम नूं खत्म करके रखना है, हुण क्रोध नूं मिटा के रखना है। इस तरह दा जद वीर रस अंदर पैदा होंदा है, तो वीर रस दी हालत दे च जिस रंग दी धारी अंदर बनदी है वो नीला है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी फौज दा बेशतर हिस्सा जे नीला रंग दा बाणा पहन के मैदाने जंग दे चाया, तो एवें नहीं सी, सुभावक नहीं सी, बल्कि अंदर दी धारी बार प्रगट हुई सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिंह अगर काला रंग पहन के आए, काले दस्तारे करके आए, तो एवें नहीं, कुछ रोस भरी हालत दे चाए। वक्त दी हकूमत ते रोस है, गुनाहां ते रोस है, दुराचार ते रोस है, काम ते रोस है, क्रोध ते रोस है, ते जद रोस है तो फिर काला रंग अंदर उभरेगा, और जद इन्हां नूं मिटाण दी भावना जोश पैदा होवेगा तो नीले रंग दा जन्म होवेगा। इस वास्ते नीला रंग भी साधुआं ने पहन लिया, खास करके उन्हां साधुआं ने जो अठे पैर वीर रस नाल भरे रहिंदे सन। काले जामे भी पहन लिया उन्हां साधुआं ने जिन्हां दे अंदर रोस प्रधान होंदा सी, जिन्हां दे अंदर प्यार प्रधान सी, उन्हां ने भगवा वेश धारण कर ले, जिन्हां दे अंदर सुलह कुन बिरती। और इसे तरीके दे नाल दान ते परोपकार दा मादा बहुत उजागर होया, उन्होंने चिट्टे रंग नूं पहल दित्ती। नीला रंग जिथे जोशदा है उथे विशालता दा भी है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे घोड़े दा रंग नीला, ते अज भी जे UNO दा झंडा देखिए तां नीले रंग दा, यूनाइटेड नेशन दा। ये नीला रंग दरअसल संसार दा प्रतीक है, आसमान नीला है ते उहदे थले सारे दा सारा संसार है। यूनाइटेड नेशन ने ये जो नीला रंग चुनिया, इस तों भाव यह है कि असी सारे संसार दी नुमाइंदगी कर, असी सारे संसार बारे सोचना है और एक सार सोचना है। नीला रंग विशालता दा भी है, नीला रंग अपनी थां दे उत्ते बहुत वड्डी महानता रखदा है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान। अंदर जो जोश पैदा हो गया है, विशालता पैदा हो गई है, ये असी नीला रंग पहने। और विकारां प्रति जो रोस पैदा हो गया है, ये असी काले रंग दी पोशाक पहनी है। और अंदर जो सुलह कुन बिरती पैदा हो गई है, अमन पैदा हो गया है, दान दी बिरती पैदा हो गई है, ये असी चिट्टे रंग दे बस्तर पहने ने। और नाम जपदिया जपदिया सुरत जो नाम विच लीन हो गई है, रती गई है, प्यार पैदा हो गया है, ये असी लाल रंग दी पोशाक पहनी है। धार्मिक दुनिया विच ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੀਤ ਰੰਗ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਪੁਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਤਾਂਬਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਖੇੜੇ ਦਾ, ਮਸਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਖੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਛ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਉਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਬੂ ਕਰਦ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਿਚਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਆਲੂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਪਾ ਚੰਬੇਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕੋਮਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਗੀਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਅਦਬ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਫੁੱਲ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਠੋਸ ਹੈ, ਨਿਰਗੰਧ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਕੋਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਦਇਆ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਿਤਾ संतोख है संतोख ताप रखिया जिन सूत दया तो सेवा का जन्म होंदा है और संतोख तो सिमरन का जन्म होंदा है सिमरन करके मनुख निरंकार नाल जुड़ता है और सेवा करके मनुख संसार नाल जुड़ता है ऐसा धड़ा जगत विच सी जिसने सेवा नू त्याग दिता कोई लोड़ नहीं संसार नाल जुड़न की कोई लोड़ नहीं कठोर हो गए इतने कठोर हो गए कि सिमरन करना भी औखा हो गया बहुत औखा हो गया क्योंकि कठोर हिरदिया विच प्रभु का वासा हो ही नहीं सकता इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दुआ नू प्रधानता दिती जैसे मात पिता बिन बाल ना होई भगत कबीर का कहना कल्ली मां पुत्र नू जन्म नहीं दे सकती कल्ला पिता पुत्र नू जन्म नहीं दे सकता जैसे मात पिता बिन बाल ना होई इस तरह धर्म नू जन्म देण वास्ते दया ते संतोख दोवें इकट्ठे चाहिए ने संतोखी हिरदे चों सिमरन की धार निकलेगी और दयालु हिरदे चों सेवा की धार निकलेगी सेवा करके संसार का भला होवेगा और सिमरन करके मनुख का अपना भला होवेगा सेवा करके वह संसार नाल जुड़ेगा और सिमरन करके वह निरंकार नाल जुड़ेगा इस वास्ते गुरु नानक ने संगत ते पंगत की मर्यादा तोरी भई मनुख सेवा भी करता रहे सिमरन भी करता रहे और जिथे सेवा सिमरन प्रधान रूप में प्रगट हो जाए समझो उत्थे धर्म प्रगट हो गया मानो ओ धर्मी मनुख है।